इस बारे की कुछ हल्की आप। इंसान को ज़िंदगी में हर तरह के मौके मिलते हैं, अच्छाई के भी और बुराई के भी। दुआ करें कि मुझे अल्लाह हिदायत के रास्ते पे रखे। दूसरी बात जो हम सीखेंगे, इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली सिर्फ इस किताब के साथ जुड़ने से आती है। दुआ करें कि अल्लाह इस किताब से ताल्लुक़ को मजबूत कर दे। फिर ज़िंदगी में अगर खिलाफ़े तवक्को हालात आ जाएं, और याद रखिए आएंगे, वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफी, और वो सारी बातें जो आप पीछे पढ़ चुके हैं उसको ज़हन में ले आएं, तो क्या करना है? सब्र करना है। ये इंसान की आजमाइश होती है। फिर अगली बात हम इस पारे के नाते से जो सीखेंगे, दीन के काम खालिस होकर कीजिए। ये बड़ी अहम बात है जी। खालिस नहीं होंगे ना तो ये सारे जो मैंने आपको सब्ज़ बाग दिखाए इनमें एक भी नहीं बुरा होगा। अंदर का खलूस, देर इज़ नो अदर मोटिव। और ये कहाँ से आता है, आप ये भी पूछ लें, ये सुन सुन के आता है। बर्तन में मैल लगा हुआ है, गंदा है, साबुन ऑयल लगा है, धोते रहे धोते रहे, पहले हाथ से धोएं, पानी से जिप लगाइए, फिर उसमें आप विम लगाइए, फिर उसको स्टील वूल से चमकाएं, एक दिन आएगा आप खालिस हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नतीजे की परवाह नहीं करनी, और ये याद रखिए कि अल्लाह हमारी कोशिशें देख रहा है। हर किस्म की आजमाइश या मुश्किल में सिर्फ अल्लाह को पुकारना है, दुनिया की बजाय दीन को तरजीह देनी होगी। अगर आप इनमें से एक एक जेम को लिखते जा रहे हैं ना, यकीन करें यह आपके लिए इतनी खूबसूरत चेकलिस्ट बन जाएगी कि आज के बाद आप इस काम को इंजॉय करेंगे। फिर अगली बात सीखिए कि जो भी काम करें इस्तकामत के साथ करें। कच्चा पक्का काम बिल्कुल फजूल होता है, ना करें, इससे बेहतर है। आप स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे हैं, स्क्रीन अच्छी नहीं चल रही, बेहतर है ना दिखाएं। अगले को एहसास भी नहीं होगा कि इन्होंने कुछ दिखाना था, लेकिन दिखाएं और वो अच्छी ना दिखे, ये गलत है। तो दीन को हमेशा परफेक्शनिस्ट बनकर कीजिए, और अज़कार की कसरत करनी है, क्योंकि जिक्र जो है ये दिल की जान है। फिर इसी तरह अल्लाह के काम करते हुए लोगों से तारीफ़ की उम्मीद ना रखें, और तनकीद से घबराएं ना। और मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ सबसे एंड पे निकलती है दीन का काम करने वालों के अंदर से। बड़ी मुश्किल से कई साल लग जाते हैं इस मुकाम पे आते आते कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, मुझे किसी की नहीं परवाह। टाइम लगता है लेकिन आ जाता है ये वक्त अल्लाह के हुक्म से। फिर इस्लाह का काम अपनी ज़ात से शुरू करना है। सबसे पहले अपने आमाल को चेक करना है, ख़ुद को चेक करें कि मेरी कोशिशें दुनिया की कामयाबी के लिए हैं या आखरत की कामयाबी के लिए। और एक और बात नोट कीजिए, किसी भी नेकी को मामूली समझ के ज़ाया ना कर दें। लो आज मैं ना जाऊंगी तो क्या होगा, बड़ी बाजियाँ कर लेंगी, मेरी जगह पे फलां है फलां है। नहीं, आपकी नेकी चली जाएगी, अगले के हाथ आ जाए बेशक ना आए ये अलग बात है। फिर अगली बात, पहले तोलो फिर बोलो। इस मुहावरे पर अमल करते हुए, दीन के काम करते हुए ज़ुबान को नहायत मुख्तात अंदाज में इस्तेमाल कीजिए। मैंने जुमला तो पहले भी बोल दिया है कि उल्फत की कातिल ज़ुबान। दीन का काम करने वाले साथियों के बीच में मोहब्बत क्यों कम हो जाती है या दिखता है कि नहीं रही? कोई फालतू बोला हुआ जुमला, कोई ताना, कोई बेतकल्लुफाना मजाक मत कीजिए। इस छुरी को अंदर रखेंगे, जिक्र से तर कीजिए, आपको बहुत कम इंशाल्लाह हादसात से दो चार होना पड़ेगा। फिर इसी तरह अपने साथियों को तनहा नहीं छोड़ना, ये कहकर अब मैं क्या करूँ, मैंने तो अपने हिस्से का काम कर दिया। नहीं, खुद भी और साथियों को भी अल्लाह से जोड़िए। आप अल्लाह के काम करेंगे, अल्लाह आपके काम करेगा, ये भी एक अल्लाह की बड़ी प्यारी सुन्नत है। आप अल्लाह के दीन को अपना बच्चा बना लें और उसकी हिफाजत करनी शुरू कर दें, अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करेगा। बस आप देखिए कि आपके दरवाजे पे बेल बजती है, दरवाज़ा खोला, एक मांगने वाली है, भीख मांगती है, कुछ दे दो, ले लो, कर लो, ये कर लो। आप 10 रुपये का नोट दे देंगे, कुछ आटा चावल है तो दे देंगे। एक और औरत आती है, वो फौरन आपके हाथ में जो बच्चा है उसको पकड़ती है, फिर उसको प्यार करने लगती है। आप कहते हैं अच्छी लग रही है, मैं तो काफ़ी दिन से सोच ही रही थी कोई मेट ढूंढूं। आप अंदर बुलाते हैं, खाना पड़ा हुआ है, कहती भाजी मैं आपके बच्चे को खाना खिलाऊं? आप कहते खिलाओ, खिला लिया। खिलाती फौरन उठाती है, सिंक पे जाकर उसको नहलाती धुलाती है। आप दिल में सोच लेते हैं कि दिस इज़ बेस्ट मेट। आप कहते हैं काम करोगी, मेरे बच्चे की देखभाल करोगी? मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगी महीने के। अब आप समझ लीजिए, जिसने मांगा भीख दे दो, आपने उसको दिए 10 रुपये और वन टाइम दे के कहा जाओ जाओ माफ़ करो। और जिसने आपके बच्चे की हिफाजत की, आप कहते हैं अब तू मेरे घर में ही रहा कर। ये है अल्लाह का दीन। आप अल्लाह के दीन को अपना बेबी बना लें। अगर 4 बच्चे हैं तो 5वां बेबी दीन। तीन बच्चे हैं तो चौथा बेबी दीन, कोई भी बेबी नहीं है तो सबसे बड़ा बेबी अल्लाह का दीन बनाइए, देखिए फिर अल्लाह आपको देता क्या है। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि अगर लोगों को तो जो दिखता है वो दिखता है ना, तो जो नहीं दिखता वो दिख जाए, तो सिर्फ दुनिया की और इन मोहब्बतों के पीछे और इन दुआओं के पीछे लोग दीन का काम करने लगें, नहीं इसके लिए भी नहीं करना, करना खालिस अल्लाह के लिए है। फिर आप अल्लाह से प्यार करें, लोग आपसे प्यार करेंगे, ये अल्लाह की एक सुन्नत है। हदीस जिब्रील आप पीछे सुन चुके हैं, कैसे जिब्राइल से शुरू करके अल्लाह दुनिया में मोहब्बतें उस शख्स के लिए बांट देते हैं जिससे अल्लाह सुबहाना ताला प्यार फरमाते हैं। चलिए वालमु, इल्म हासिल कीजिए, इल्म के नाम पे ये पारा है। सूरत अल अनफाल की आयत 41 41 से शुरू होगा, 75 तक चलेगा, जिसका काफ़ी हद तक खुलासा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लफ्ज़ों में कर लिया। अब हम पढ़ेंगे रकू वाइज तर्जुमा और उसके अमल के कुछ नुक्ते। पहला रकू जो इस वक्त हमारे सामने है 41 से 44, टॉपिक लिखिए यौमुल फुरकान स्लैश दलील की ताकत। यौमुल फुरकान था बदर का दिन, हक और बातिल उस दिन वाज़े हो गया था, और दलील की क्या ताकत है वो हम इसमें देखेंगे। वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैयन, जान लो कि तुम जिस किस्म की जो गनीमत हासिल करो इसमें से पांचवा हिस्सा तो अल्लाह का है, रसूल का और कराबत दारों का, यतीमों का, मिसकीनों का और मुसाफिरों का। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारा जो दिन हक और बातिल की जुदाई का दिन था, इस दिन दो फौजें आपस में लड़ पड़ी और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जबकि तुम पास वाले किनारे पर थे और वह दूर वाले किनारे पर थे और काफिला तुमसे नीचे था, अगर तुम आपस में वादे करते तो यकीनन तुम वक्त मुअय्यन पर पहुंचने में इख्तलाफ करने लगते, लेकिन अल्लाह को तो एक काम करना ही था जो मुकर्रर हो चुका, ताकि जो हलाक हो और जो जिंदा रहे वो भी दलील पर हक पहचान कर जिंदा रहे। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला खूब जानने वाला है, जबकि अल्लाह ताला ने तुझे तेरे ख्वाब में इनकी तादाद कम दिखाई, अगर इनकी ज्यादती दिखाता तो तुम बुज़दिल हो जाते और इस काम के बारे में आपस में इख्तलाफ करते, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया, वो दिलों के भेदों से खूब आगाह है। जब इसने बवक्ते मुलाकात तुम्हें इन्हें तुम्हारी निगाहों में बहुत कम दिखाया और तुम्हें इनकी निगाहों में कम दिखाया, ताकि अल्लाह ताला इस काम को अंजाम तक पहुंचा दे जो करना ही था, और सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते हैं। ग़ज़वे बदर की कुछ झलकियाँ और उसके कुछ नतायज हैं, और ख़ास तौर पे इसमें माल गनीमत की बात है। याद रखिए कि माल गनीमत मुसलमानों से पहले वाली उम्मतों पर हराम था, लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से इसको हलाल करार दिया। माल गनीमत क्या है? दुश्मन से जो माल हासिल किया जाता है जंग जीतने की सूरत में, उसके पांच हिस्से किए जाएंगे। ये एक तस्वीर देखिए, आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह वाजे करेगी। सबसे ऊपर एक हिस्सा लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है, बाकी चार हिस्सों में मुजाहिद मुजाहिद मुजाहिद। जो माल मिलता था चार हिस्से उन लोगों को बंट जाते थे जो कि उस जंग में हिस्सेदार थे, फिर उसकी मजीद सब डिविजन्स होती थी, जो घोड़े पे आता उसके घोड़े को भी मिलता। याद रखिए ये वो रास्ता है कि जिसमें इंसानों को तो मिलता है, आपकी गाड़ियाँ जो पेट्रोल जलाती हैं, जो सड़कों पे दौड़ती हैं, आपके घोड़े, आपके रिक्शे, आपकी साइकिलें, वो भी क़यामत के दिन नेकियों के पलड़े में तुलेंगी। तो ये हिस्से पांच बांटे जाते थे। हज़रत अबू अलिया कहते हैं कि माल गनीमत में आप पांच हिस्से करते, चार हिस्से मुजाहिदीन के होते और पांचवें हिस्से में से फिर मुट्ठी भर निकाल लेते और इसको अपने कुंबे में डाल देते, फिर जो बच जाता इसके फिर पांच हिस्से करते और वो तकसीम होते। यहाँ अल्लाह का नाम सिर्फ बतौर तबर्रुक है, इब्ने अब्बास की यही रिवायत है। यानी आप देखिए कि 1/5 अल्लाह के नबी रखते, 1/4 सबको बांट दिया जाता, तुम ये ले लो तुम ये ले जाओ। अब वो जो 1/5 था ना, उसके फिर आगे से पाँच हिस्से होते थे, ये आपके पास लिखे हुए हैं, कराबतदार, कुंबे वाले, मिस्कीन, मुसाफिर और यतीम। इससे क्या पता चलता है? इस्लाम में माल की बांट बड़ी ज़रूरी है। जब माल सिर्फ अमीरों के पास रह जाता है और आप कमाते हैं आपके ही पास रह जाता है, तो याद रखिए नुकसान फिर उसका क्या होता है कि उस माल को आप सही तरह से इंजॉय नहीं करते। फिर तो वही बात है कि जायदादों पे जायदादें तो बनती हैं, लेकिन गरीबों के घर नहीं बन पाते, सड़कें टूटी हुई, हॉस्पिटल्स नहीं, मरीज़ नहीं है, और आप स्विमिंग पूल पे स्विमिंग पूल बनाते जाते हैं। तो ये तकसीम दौलत दिखाई जा रही है मुस्लिम स्टेट में, ये सारी चीज़ें होंगी कि ज़रूरी नहीं कि जो कमाए उसी को मिले, इट्स नीड बेस्ड, ज़रूरत जहाँ है उधर माल दिया जाएगा। और यही असूल आपको ज़कात की मद में दिखेगा जो इसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और यही इधर है। آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ نمبر ایک، میرے سارے راز، میرے میلانات یعنی میری انکلائنیشن، میری توجہ کیا ہے اللہ کو خوب پتہ ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے. مال کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، مال میں رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کا حصہ بھی دینا ہے. فیصلوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے. مجھے دشمنوں سے اللہ ہی بچائے گا. سارے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. رکوع نمبر دو، آیت 45 سے 48. ٹاپک لکھیے، نصرت الہی پانے کی شرائط. ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد ملے کسی بھی معاملے میں. اگر پیپر ہو رہا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے بس آج کا پیپر تو بہترین ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری مدد لینا چاہتے ہو، میدان جنگ میں ہو، میدان تبلیغ میں ہو، دین کے کام کر رہے ہو یا دنیا کے کر رہے ہو، اپنی گھریلو زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوششوں میں ہو، رشتہ داریوں کو نبھا رہے ہو. اصول ایک ہی ہے، بہت ہی خوبصورت رکوع ہے. ہر میدان میں کامیابی کے نسخے، ہر محاذ پہ وہ بچیاں اپنے سسرال میں گئی ہوں اور وہاں اپنا گھر بسانے کے ارادے کر رہی ہیں، وہ ایک مرد ہے جس نے نیا نیا اپنا کام شروع کیا ہے اور ایک آفس میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اصول ایک ہی ہے جو ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو. پہلی چیز، بی فرم. اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو. اپنی بچیوں کو یہ سبق پڑھا کے بھیجئے. بیٹا، چاہتی ہو کہ گھر بنے، سسرال کی محبت ملے، شوہر کا پیار ملے، تو اللہ کی فرما برداری کرتی رہنا، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنا. اگر بچیاں اللہ سے جڑی جائیں گی نا تو گھر والے ان سے خود بخود جڑیں گے، اور یہی اصول ہر محاذ کا ہے. پھر آپس میں اختلاف نہ کرو. یہ بھی بچیوں کو سبق پڑھا کے بھیجیں کہ جاتے اس گھر کے اندر جنگ نہ شروع کر دیں انڈیا پاکستان کی. دشمن نہ سمجھے ساس کو، اور دشمن نہ سمجھے نندوں کو، اور جہاں دین کے نام پہ جمع ہوئے وہاں بھی یہی کیجئے. اختلافات کو پیچھے کرنا ہے. یاد رکھیے، جب تک اختلافات ختم نہیں ہوں گے، یاد رکھیے کہ اختلاف ایک ایسا کینسر ہے جو دینداروں کو کھا جاتا ہے. بعض دفعہ دین کا کام کرنے گھر سے نکلتے ہیں اور جھگڑوں کی نظر ہو کر دین کا کام پیچھے پڑا رہتا ہے، آپ جھگڑتے رہتے ہیں. جیسے ماں بچے کو کہے کہ کشن دینا، اس بات پہ دو بچے بھاگے، کشن ماں تک نہیں آئے گا، وہ دونوں وہاں لڑ رہے ہوں گے، میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا. تو دین کے اندر خاص طور پہ اختلافات بہت ہی مشکل ہے. اور بعض دفعہ ہوتا کہ میں تو اتنی مشکل سے آئی، یا میرا کام کسی اور کو دے دیا، آج تو مجھ سے کچھ کروایا ہی نہیں، اچھا میں دیکھتی ہوں میرے بغیر کام کیسے ان کا چلتا ہے. یہ ساری چیزیں یاد رکھیے کہ دین کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے. آپ آ کے بیٹھ گئے نا، بس آپ کا کام شروع ہو گیا، باقی کام دوسری طرف ہے. پھر فرمایا، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے گھیرنے والا تھا، جبکہ ان کے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا کر پیش کیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں. لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. دیکھیے، ابلیس بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو کسی کا یہ کہنا اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ کا بہت خوف ہے، ضروری نہیں کہ یہ بات کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو. تو ان آیتوں میں دیکھیے، آیت 46 میں ذکر کی بات ہے، اللہ کو یاد کیجئے. اللہ کے سوا کسی عبادت کو اتنا کثرت سے قرآن میں نہیں مینشن کیا گیا جتنا ذکر کو، کیونکہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ تو وقت لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، اور نہ کسی دوسرے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. کھانا پکا رہے ہیں، ذکر کیجئے، کپڑے استری کر رہے ہیں، ذکر کیجئے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ذکر کیجئے. اسی طرح امام جزری کہتے ہیں، ذکر اللہ صرف زبان یا دل سے ذکر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر جائز کام کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کرنا بھی ذکر ہے. تو اپنا جائزہ لیجئے، کیا میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہوں، اور کیا میں ہر وقت اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے خواب دیکھتی رہتی ہوں. پھر دوسری بات، ایک اس حصے میں اختلافات کی ہے. हमारे आज के इस दौर का सबसे बड़ा मसला फितना उम्मत का इख्तलाफ है। आप अगर अपने अकीदे पर अमल नहीं करते, आप अल्लाह के दीन के उस बुनियादी असूल को नहीं मानते जो मानना चाहिए, तो आपको ख़ुद से भी इख्तलाफ करना चाहिए। आज फ़िरकों में बढ़कर, जमातों और गिरोहों में बढ़कर उम्मत इतनी टूट गई कि आज ज़रूरत है कि इनके फ़ासलों को कम किया जाए। आपने मैंने क्या सीखा? नंबर एक, साबित कदमी इख्तियार कीजिए। जो काम शुरू करें उसको पूरा करें। अधूरे काम हमारा बहुत बड़ा टाइम वेस्टर होता है। एक काम किया, थोड़ा सा किया, कुछ और शुरू कर दिया, एक और शुरू किया, आधा किया, फिर आगे चल पड़े। ऐसा ना कीजिए। जो काम कीजिए पूरे यकीन से कीजिए। दूसरी बात, अल्लाह को याद करें। आपस के झगड़े कमज़ोर बना देते हैं, इसलिए झगड़ों से बचिए। दिखावा नहीं करना, इतराना नहीं। ये दिखावा कहाँ होता है? हेड काउंट, कितने लोग आते हैं। ये सवाल मुझे जितना बुरा लगता है, कितना मैंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया होगा किसी को, आपके पास कितने लोग आते हैं, वहाँ कितने, कुछ तो होगा। मैं कहती हूँ बहुत आते हैं, फिर भी कुछ तो पता होगा। भाई नहीं पता मुझे, मुझे नहीं पूछना। याद रखिए, हेड काउंट नहीं करना। ये भी एक शैतान का बहुत बड़ा धोखा होता है। हमारे इतने फॉलोअर्स, हमारे इतने अकलमंद। आज के दौर में सब्सक्रिप्शन ख़रीदना क्या मुश्किल है? आप मार्केटिंग की दुनिया में जाकर पढ़िए, यूट्यूब पे जाकर आप जितने मर्ज़ी ख़रीद लीजिए, फेसबुक पे क्लिक्स ले लीजिए, एक एक क्लिक के पैसे दीजिए लीजिए। आपको 1 लाख लोग क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आप ख़ुद नमाज़ भी ना पढ़ें, आपके किसी काम आएगी ये बात? मैं आप सबको पढ़ा के जाऊँ, कितने लोग हैं? आप लोगों को खुद भी दिखता है, और जो बाहर के वो आपको भी नहीं दिखते होंगे, मुझे भी नहीं दिखते। जितनों को अल्लाह पहुँचा दे, मुझे तो बस इतना पता है कि जिसको पहुँचे वो इससे सीखे, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आए। लेकिन मैं यहाँ से उठूँ और मैं जाकर अपने घर वालों से झगड़े शुरू कर दूँ, तो बताइए क्या मेरा ये पढ़ाना आपको तो फ़ायदा देगा? मुझे नहीं देगा। कहते हैं कि शम्मा की तरह मत बनो, खुद जलती है, दूसरों को रोशनी देती है। कई लोग, अल्लाह हमें उनमें ना करे, कि खुद जहन्नुम की आग में जलेंगे और दूसरों को उनसे फ़ायदा होगा। तो दीन के अंदर बहुत ज़्यादा ये बातें, मशहूर, शोहरत बड़ी, इससे कुछ ज़्यादा मुतासर ना हो, हाँ खुश हों। आप कहते हैं फिर क्या हम खुश ना हो ज़्यादा लोग आएँ, यहाँ सब इतनों को देखे खुश ना हो, अच्छा वहाँ यूट्यूब पर इतने सुने खुश ना हों, इस बात पर खुश हों कि ये सुन रहे हैं, इनको फ़ायदा हो रहा है, दैट्स इट। लेकिन उसको अपनी वजह बना लेना कामयाबी की, और फिर शैतान धोखा क्या डालता है? तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तुम लोग काम कितना अच्छा कर रहे हो, देखो अब तो इतने लोग आ गए। तो फिर वो भी बात अपने ही दिखावे में आती है। इतराना नहीं है, आजजी के साथ कीजिए, अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत खुद बहुत डाल देगा। फिर काफिरों के रंग ढंग इख्तियार नहीं करने, ये भी बड़ी अहम बात है। जितना गैर मुस्लिम कल्चर से अपने आप को आज़ाद करते जाएंगे, अल्लाह की मदद आपके पास आती रहेगी। फिर अल्लाह के रास्तों से किसी को भी नहीं रोकना। बाज़ दफ़ा ढके छुपे हम खुद भी रोक रहे होते हैं, उससे बचिए। अगला रुकू है रुकू नंबर 3, आयत है 49 से 58। बहुत ही प्यारा टॉपिक है इसका, नेमत पाकर रवैये बदल देना, जवाले नेमत का नुक्ता आगाज़ है। देखिए, अल्लाह किसी को नेमत दे ना दे, किसको दे, कोई असूल नहीं है। अंगूठा छाप लोगों को करोड़पति बना देता है अल्लाह। कितने सेठ साहब हैं जिनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता, और कितने मास्टर्स और PhDs किए हुए बेचारे लड़के हैं, वो बगैर जॉब के फिर रहे हैं। अल्लाह का कोई कानून नहीं है कि अकलमंद को पैसे दे दूं और बेवकूफ़ को ना दूं। लेकिन नेमत देने के बाद उस नेमत को बरकरार रखना है कि नहीं रखना, इस पर अल्लाह का कानून हम इस रुकू में पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें इस पे गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें, इस यकूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरद। जब मुनाफिक कह रहे थे, और वो भी जिनके दिलों में रोग था, कि इन्हें तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है, यानी ओवर एस्टिमेट करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। यानी जिनके दिल पूरे दीन पे लगे नहीं होते ना, वो तमाशा ही होते हैं, जैसे मैच खेलने वाले 4-6 लोग और बाकी सैकड़ों की तादाद में तमाशा देखते हैं। कुछ लोग जो आपकी इस कॉज से राज़ी नहीं होते ना, वो कहते देखते हैं कैसे करते हैं, ऐसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, ये कोई हो ना, हो के रहेगा, क्योंकि आप पे नज़रें नहीं हैं, ये अल्लाह पे नज़रें हैं, ये अल्लाह के ऊपर नज़रें लग के करने वाले काम होते हैं। याद रखिए, दीन के काम में कभी दूसरे लोगों पर नज़र मत रखिए, फ़लाँ ये कर देगा, फ़लाँ ये कर देगा, नहीं, अल्लाह उनसे करवा ले, लेकिन आप अल्लाह पे नज़रें रखें। और जो भी अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह ताला बिला शक व शुबा गलबे वाला और हिकमत वाला है। کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کی سیرینوں پر مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ بدر میں جو کفار مارے گئے ان کی طرف اشارہ ہے۔ بس سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلے لوگوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی۔ وہ شعر بھی ہے نا، آگے بھی آئے گا سورہ رعد میں غالباً، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے۔ فرمایا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے جنہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے ان کو برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ہی ظالم تھے۔ یہ کیا ہوا؟ بدر کے معاملے میں فرعونی کیوں آگے؟ کیونکہ بدر میں جو قتل کیے گئے تھے کفار، ان کو بدر کے کنویں میں پھینکا تھا اور فرعونی پانی میں ڈوب گئے۔ دونوں میں وجہ مماثلت پانی میں جانا تھا۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں گے، جن سے تم نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ یا نوٹ کیجئے، وعدے کر کے بار بار توڑ دینا، کمٹمنٹ کر کے بار بار چھوڑ دینا آپ کو دین کے کاموں سے دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دو بار کبھی بھی نہیں ڈسا جاتا، تو ایک غلطی ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی۔ وہ پھر آپ کی عادت ہے، اس کو جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے نہیں ہوگی، اور عادت ایک وقت آتا ہے کہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے کہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مار مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کمٹمنٹ کی نبھا نہیں پا رہے، اچانک چھوڑ دو، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں معاہدوں کو توڑنے اور جوڑنے کے قانون ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تم بھی خیانت نہ کرو۔ نقض عہد یعنی عہدوں کو توڑنا مسلمانوں کی طرف سے ہو بھی تو بھی خیانت ہے، جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ یعنی کمٹمنٹس کر کے نبھاؤ، یہ مطلب ہے۔ وعدہ کیا تو پورا کرو، کھڑے کھڑے اپنے کام سے ہٹ جانا، میں جا رہا ہوں، مجھ سے اب نہیں ہوتا، میں نہیں کرتی، بس ہو گئی۔ ایسے ٹپ ٹپ کر کے پرس اٹھا کر بندہ باہر نکل جائے، اس وقت تو اگلا بندہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن یاد رکھیے بعض دفعہ ساری کی کرائی پہ پانی پڑ جائے گا آپ کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی معاہدہ ٹوٹے تو برابری کی بنیاد پہ، یعنی دونوں طرف سے کنڈیشنز جو ہوتی اس کو دیکھیے۔ آپ کبھی ویسٹ میں گھر کرائے پہ لے کر دیکھیں، آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ آپ کرائے پہ گھر لیتے ہیں، آپ کو وہ دیواروں سے لے کر فرش، فرش سے چھتیں، اور ایک ایک سوئچ چیک کرواتے ہیں، کچن سے لے کے واش رومز، ہر چیز بہترین حالت پہ کام کر رہی ہے۔ اگر کہیں اسکریچ پڑا ہوا ہے نا، آپ کو پھر وہ دوسرے سٹیپ پہ موقع کیا دیتے ہیں کہ جا کے گھر میں دیکھیں، کہیں مثال ہے فلور پہ کہیں وہ ایک چھوٹی سی لکیر آ چکی ہے، کہیں دیوار پہ، آپ اس کی پکچر بنا دیتے ہیں، آپ ان کو بھیج دیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، یہ چیز ہمارے پاس ہے۔ اب جب آپ سال دو سال رہنے کے بعد وہ گھر ان کو واپس کریں گے نا، تو جو آج لیتے ہوئے آپ نے کیا نا، کل وہ دیتے ہوئے وہ آپ سے کریں گے۔ جس طرح برانڈ نیو گھر آپ لیتے ہیں نا کرائے پہ، جب چھوڑتے ہیں ایسا چھوڑتے ہیں۔ آج پاکستان میں، اپنے اس ملک میں، اللہ ہمیں معاف کرے، کسی کو گھر کرائے پہ دیں، اس سے بہتر ہے آپ اس کو فری میں دے دیں۔ جب واپس ملے گا تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ اس کو نیا گھر دیا تھا۔ تو معاہدے، کمٹمنٹ غیروں نے سیکھ لیں، آج ہم مسلمان دیکھے تھے، اپنا تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی چیزوں کو بھی اپنی چیزوں کی طرح استعمال کرنے والا بنا دے۔ کیا سیکھا اس رکوع سے؟ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، عہد پورے کرنے، حق کا انکار کرنے والے بدترین لوگ ہیں اس لیے انکار نہیں کرنا، ظلم سے بچنا ہے، نفاق سے بچنا ہے، کیونکہ ایسے شخص کی موت بڑی سخت ہوگی۔ عمل بدلیں گے تو رحمت بھی بدل جائے گی، نعمت کی قدر نہ کی تو اللہ واپس لے گا۔ اس پہ 3 سیکنڈ غور کیجئے۔ اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ کے دین کی نعمت ہے، جب اس کی قدر نہیں کرتے، شوق سے چھوڑیے، اللہ آپ سے बेहतर लोगों को ले आएगा। आप और मैं, हम दो ही तो लोग बैठे हैं इधर। याद रखिए, इस काम को आजिज़ी के साथ करें, शुक्रगुजारी के जज्बों के साथ करें। अल्लाह ताला आपसे मज़ीद काम और भी करा लेगा, और फिर इसके बाद अल्लाह ताला आपसे बेहतरीन बेहतरीन काम भी लेगा। अगला रुकू देखिए, 59 से 64, टॉपिक है मोमिनीन को तसल्लियाँ। जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं ना, हालात जितने अबतर होते हैं ना, उतनी ऊपर से तसल्ली ज़्यादा आती है। वो कहते हैं ना, उठते हैं हिजाब आखिर और आता है नालों का जवाब आखिर। तो यहाँ अल्लाह ताला मोमिनों को तसल्लियाँ दे रहा है कि फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैसे? वला यखसबन्नल लज़ीन कफरू सबकू इन्नहुम ला युजिज़ून। काफिर ये ख्याल ना करें कि वो भाग निकले, यकीनन वो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। तुम इनके मुकाबले के लिए अपनी ताकत भर कुव्वत की तैयारी करो और घोड़ों को तैयार रखने की, कि इससे अल्लाह के दुश्मनों को खौफ सदा कर सको और इसके सिवा औरों को भी, जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला इनको खूब जान रहा है। जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में सर्फ करोगे, वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा हक मारा ना जाएगा। एक तो बताया कि मुसलमान भी हथियार बनाएंगे, मुस्लिम्स को भी एटॉमिक एनर्जी बनना है, न्यूक्लियर बम बनाना है, वरना तो दुश्मन आपको खा देगा। देखिए, एटम बम के डर से दुश्मन हमला नहीं करता ना, कि अगर हमने इन पे हमला किया तो ये भी हम पे कर देंगे। तो तैयारी पूरी रखिए, फिर अल्लाह पे नज़रें लगाइए। और ये जो आखिरी हिस्सा है, इस पे ज़रा सा गौर कीजिए। क्या मुझे यकीन है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जो लगाऊंगी मुझे पूरा पूरा मिलेगा? अल्लाह पे ये ट्रस्ट कायम कीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला आपको कितना और ज़्यादा देगा। अगर वो सुलह की तरफ झुके तो भी सुलह की तरफ झुक जाओ, और अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन वो सुनने जानने वाला है। ये बड़ी प्यारी आयतें हैं तफसीर के एतबार से। बदर के कैदियों पे कुछ लोगों को शक था कि ये कहीं स्पाई ना बन जाएं, कहीं हमारे घरों की बातें बाहर ना बताने लगें, ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो अल्लाह कह रहा, कोई बात नहीं, रिस्क लो, दीन के फ़ायदे के लिए रिस्क ले लीजिए। हम तो अल्लाह की पनाह से दीन के कामों को ऐसे छुपाते हैं जैसे ये कोई जंगी राज है। क्या तौरात की हिफाजत की थी अहले किताब में, वो आज हम अपने दीनी राजों की करते हैं, क्या हो जाएगा? कोई आप वाकई गलत काम कर रहे हैं जो किसी बाहर के बंदे को ना पता चल जाए? तो याद रखिए कि दीन के काम ओपन माइंड के साथ, खुले जहन के साथ करने चाहिए। इस आयत से आपको, मुझे इसका अंदाज़ा मिलता है। अगर वो तुझसे दगाबाजी करना चाहेंगे तो तुझे अल्लाह काफ़ी है। नहीं नहीं, फिर लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर देंगे? अच्छा, अगर वो करेंगे ना, तो अल्लाह भी तो देख रहा है, अल्लाह फिर उनको खुद पूछ लेगा। आप इतनी ज़्यादा बातें ना सोचें, आप वो कीजिए जिसमें दीन का फ़ायदा है। फिर आगे वो आयत आ गई जिसका पीछे जिक्र हुआ, इसी ने अपनी मदद से और मोमिनों से तेरी ताईद की है, इनके दिलों में बाहमी उल्फत भी इसी ने डाली है। ज़मीन में जो कुछ है, तो अगर सारे का सारा भी खर्च कर डालता तो भी इनके दिल आपस में नहीं मिला सकता था। ये तो अल्लाह ही ने इनमें उल्फत डाल दी है, वो गालिब हिकमतों वाला है। क्या पता चला? साथियों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत भी अल्लाह ही डालता है। जितना आपके दिल में इखलास ज़्यादा होगा, अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा होगी, अल्लाह ताला आपके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डालेगा। आप किसी भी जगह दीन के नाम पर जमा हों या दुनिया के नाम पर, इस चीज़ को कभी मत भूलिए। क्योंकि आप देखिए, अल्लाह का एक नाम है अल वदूद, प्यार देने वाला। अगर ज़ुबान की हिफाजत कर ली जाए, सोच सीधी रखे, दिल में बदगुमानियाँ न रखें, तो अल्लाह के हुक्म से साथियों में प्यार बहुत होता है। कई साथी इसकी गवाही देते हैं कि दोस्ती तुम्हारी पहले से भी बहुत थी, पर जब से मिलके दीन का काम करने लगे हैं, अब तकल्लुफ़ ख़त्म हो गया। असल पता क्या होता है, ज़िंदगी रियलिस्टिक हो जाती है, वो सब बेकारियात निकल जाती हैं। और नबी की मौजूदगी में सहाबा के दिल जुड़े हुए थे, आपके बाद भी जुड़े रहे। ये अलग बात है, एक दो वाक़ ऐसा हुआ, करबला जैसा या कुछ और, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात हुई, तो करना क्या है, दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे दिल में दूसरे की मोहब्बत डाल दे, और हदफ अल्लाह को बना ले, जुड़ भी जाएंगे, साथ भी रहेंगे, और बातों को इग्नोर कीजिए। आप चाहते हैं साथ रहने वालों से मोहब्बत हो, हर बात को ना पकड़े। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मुंह से निकली क्यों, ये इसने कहा, फिर रोएंगे, फिर धोएंगे, फिर आंसू बहाएंगे, फिर सफाइयाँ पेश करेंगे। भाई, मेरे पास झगड़ने का टाइम नहीं, खुद को मसरूफ़ कर लीजिए। बोलना मुझे भी आता है, टाइम नहीं, तंज करना आता है, याद ही नहीं रहता कब करना था, भोले बन जाइए। आप देखिए, दूसरे आपको टॉन्ट कर रहे हैं, आप समझे ही ना, बेवकूफ़ बने, मुझे तो नहीं कहा। अल्लाह के नबी को लोग मुज़म्मम कहते थे, आप कहते थे पता नहीं किसको कह रहे, मैं तो मोहम्मद हूँ। बस ये एटीट्यूड इख्तियार कीजिए, छोटे छोटे इश्यूज़ पे छोटी छोटी बातें, सफाइयाँ करनी, ये वो, ये गलत है। कैसे दिलों में मोहब्बत आती है, सलाम आम करें, कसरत से सलाम करें, तोहफे दीजिए, छोटे छोटे दे दें, बड़े ना दें बेशक, कुशादगी पैदा करें, मुस्कुराते चेहरे से मिलें, खाना खिला दें किसी को, ये दाल बनाई थी आपके लिए ले आई, ये चावल बनाए थे आपके लिए ले आई, प्यार बढ़ेगा। जिससे आप अपने आप को खिंचा हुआ महसूस करें उसको कुछ ना कुछ ला कर दे दें, मशवरा दीजिए। अच्छा, गीबत से बचें, तानों से बचें, फिर इसी तरह खिदमत करें। बेटियों को सिखाइए कि ससुराल में अगर उल्फत लेनी है खिदमत कीजिए, तो वह कुआत न रखिए दूसरों से, सुन्नत को कल्चर दें, नरमी लेकर आएं। आप देखेंगे गिविंग बने और फॉर गिविंग बने, फॉर गिव फॉर गेट बन जाएं, ये सब प्री रिक्विजिट्स हैं किसी भी जगह दीन के काम के करने के। अल्लाह ताला आपके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत एक से बढ़कर दूसरे में डाल देंगे, क्योंकि फरमाया है नबी, तुझे अल्लाह काफ़ी है और इन मोमिनों को भी जो तेरी पैरवी करते हैं। तो क्या सीखा इस रुकू से आपने मैंने, कि अल्लाह के नबी अपने सहाबा की बेहतरीन तरबियत करते थे। वो लोग जो पहले दुश्मन थे, अदावत थी, खून के प्यासे थे, अब जानिसार बन गए, रहीम और शफीक बन गए, सदियों पुरानी अदावतें जो थी बुग़्ज़ कीने ख़त्म हो गए, और ये सच्चे दीन का तोहफ़ा होता है, और अल्लाह ताला हमें इस पे कायम रखे। अल्लामा इकबाल ने कहा, हो हल्का यारान तो बरे शम की तरह नरम, रस में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आपस में दोस्त बने, सहाबा किराम आपस में होते थे एक दूसरे से छीना चपटी करते, और मैदान जंग में जाते तो ऐसे हो जाते जैसे फौलाद है। अल्लाह के नबी भी ऐसे ही थे। निजी तौर पे दूर से कोई आपको देखता तो बहुत डरता, खौफजदा होता, गुस्से वाले हैं, सख्ती करेंगे, और जब करीब आते तो ऐसे लगता कि आपसे ज़्यादा कोई नरम ही नहीं है। यही बेहतरीन चीज़ है। आप देखिए कि रोटी ऊपर से सख्त होती है, तोड़े तो अंदर से नरम हो, वो मज़े की है, और अगर आप पकड़े रोटी झुलझुल करती और दांत में रखे तो दांत टूट जाए तो अच्छी नहीं होगी। मोमिन ऊपर से सख्त लगना चाहिए। यस, हम तरने वाला नहीं है, गलत बात नहीं बर्दाश्त होगी, हम कोई तुम्हारे लिए मोम की नाक नहीं है जिधर मोड़ो, लेकिन अपनों में बैठे तो ऐसे नरम मिजाज के जैसे क्या कोई रुई का गोला होगा। फिर और क्या सीखा, तैयारी पूरी रखिए, दुश्मनों से खौफजदा ना हो, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, सुलह करना चाहे तो माइल हो जाएं, कोई धोखे की नीयत से कुछ करेगा तो अल्लाह उसको खुद ही निबट लेगा, और अल्लाह का एहसान के मोमिनों के दिल आपस में जोड़ दिए, अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे। अगला टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, 65 से 69, रुकू नंबर 5, मोमिन तोला जाता है गिना नहीं जाता, इज़ इट ट्रू। हज़रत इब्ने मसूद की टांगें बहुत पतली थी, दुबले पतले थे, खजूर के दरख्त पे चढ़े ताकि कुछ खजूरें तोड़ें, कुछ मुनाफिक नुमा शख्स नीचे खड़े थे, उनकी टांगों का मजाक उड़ाने लगे, देखो पतली पतली टांगें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने मसूद की पतली टांगों का मजाक उड़ाने वाले नहीं जानते, क़यामत के दिन इनकी एक एक टांग ओहद पहाड़ से भी भारी होगी। अबू बकर सिद्दीक इतने दुबले पतले थे कि तहमत बार बार नीचे लुढ़क जाया करती थी तो गम करते थे, अल्लाह के नबी मेरे टखनों पे कपड़ा आ जाता है, क्या अल्लाह मुझसे बात नहीं करेगा। तो वज़न ईमान का होता है, याद रखिएगा। आज 4 बिलियन मुसलमान, हेड काउंट 1, 2, 3, 4, बदर के 313, वो 313 भारी थे आज के 4 बिलियन पे। अगर ईमान तोला जाए ना 313 का, और आज के 3-4 बिलियन जितने भी है तो वो 313 का बड़ा होगा, तो क्या बढ़ाना है फिर, ईमान बढ़ाना है इंशाल्लाह। या अय्युहन नबी युहर्रिदिल मोमिनीना अलल क़िताल, ए नबी ईमान वालों को जिहाद का शौक़ दिलवाइए, अगर आप में से 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो वो 100 पर गालिब होंगे, और अगर वो 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब होंगे, इस वास्ते से कि वो बेसमझ लोग हैं। अच्छा, अब अल्लाह ताला तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वो खूब जानता है कि तुम में कमज़ोरी है, बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्या पता चला कि वक्त के साथ ईमान घटता गया तो मुसलमानों का रोब भी घटता गया। सहाबा कराम में ईमान ज़्यादा था तो एक सहाबी 10-10 काफिरों के मुकाबले पर भी जमा रहता था। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक के मुल्क में अच्छी तरह से खून रेजी की जंग ना हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह की रदा आखरत का है, और अल्लाह ज़ोरावर बाहिकमत है। अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ से बात लिखी भी ना होती तो जो कुछ तुमने ले लिया, यानी कैदियों का फिदिया, इस बारे में तुम्हें कोई बड़ी सज़ा होती, बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की, बस खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला गफूर रहीम है। غزوہ بدر کے بعد کچھ قیدی آئے تھے، ان کے بارے میں یہ ساری انسٹرکشنز تھی. کیا سیکھا؟ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے. اللہ بوجھ ہلکے کر دیتا ہے، میری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہماری کمزوریاں دور کر دے. غلبہ اللہ کے حکم سے ملے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور سب سے بڑھ کے کیا ہے کہ اپنی نظر آخرت پر رکھیے. آخرت کی کامیابی اگر آپ کو مل گئی تو آپ کو دنیا کی چیزیں بھی سب مل جائیں گی. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ مسلمانوں سے اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی نیکیوں کو دیکھ کر اور ان کی نیتوں اور ان کے اخلاص کو دیکھ کر باقی چیزوں میں ان کو معاف کر دیتا ہے جو ان سے ہوتی ہے. یعنی دین کا کام کریں پھر بھی غلطیاں کریں، خوب کریں، دین کا کام کریں، غلطیاں بھی کریں، کوئی بات نہیں، آپ کی غلطیاں بھی بڑی پیاری ہیں. آپ پھر بھی ان سے اچھے ہیں جو کام چھوڑ چکے ہیں، آپ ان سے بھی اچھے ہیں جو کام کرتے نہیں ہیں. دیکھیے، ماسی کو آپ کہتے ہیں روز کپ توڑ دیتی ہو، پھر گلاس توڑ دیا، مجھ سے تو کبھی برتن نہیں ٹوٹا. تو اگر وہ بڑی جرت علی ہوگی کہے گی باجی آپ نے برتن دھوئے کب تھے؟ جو برتن دھوئے گا اسے ٹوٹیں گے، برتن دھوئیں گے ٹوٹیں گے، کام کریں گے غلطیاں ہوں گی. شیطان کا ایک بہت بڑا ہڈن ٹیکٹس وار کیا ہے؟ میں تو کچھ صحیح نہیں کرتی، میں چھوڑ دوں گی، اب مجھ سے کچھ نہیں ٹھیک ہو رہا، میری وجہ سے ادارے کا نقصان ہو رہا ہے، میری وجہ سے بہت مسئلے ہو رہے ہیں، نہیں میں ٹھیک کام ہی نہیں کرتی، میں نے ٹھیک نہیں ہونا. دیکھیے، آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ ٹھیک کام کریں، یہ حل نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ دیں. تو اللہ کو صحابہ کی غلطیاں بھی اتنی پیاری تھی کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کر دی کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ ان کو اس کام پہ لگے رہنے دیجئے. آگے چلیے، 70 سے 75 آخری رکوع ہے سورت کا، بہت ہی خوبصورت. ٹاپک لکھیے، ایمان کا تقاضا، یا تو مہاجر بنو یا انصار، ورنہ اب آپ بول دیجئے، میں آپ کو بتا چکی ہوں جو مہاجر یا انصار نہیں بنتا آج کے دور میں وہ کیا بن جائے گا. اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. یا ایہا النبی، اے نبی اپنے ہاتھوں تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا. حضرت عباس کہا کرتے تھے کہ میرے لیے یہ بات ہے، اپنے جزیے میں جو رقم میں نے دی تھی بعد میں اسلام پہ آنے کے بعد مجھے اللہ نے اس سے بہت زیادہ دے دیا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں تو یہ اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے، کیسے؟ شرک اور کفر پہ آ کے. آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں آ گئے، تو ان سے تمہاری دوستی کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں بہت فتنہ اور فساد ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوں جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی مومن ہیں سچے، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، تو وہ بھی تمہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے حقدار ہیں. ان اللہ بکل شیئن علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کیا سیکھا آج کے دور کے مہاجر اور انصار؟ دیکھیے، ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ تھے وہ ایک سائٹ پہ کر دیجئے. آج کے دور کے مہاجر کون ہیں؟ ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ دین کی طرف نئے نئے آتے ہیں. میں آپ سب کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہوں گی، دورہ قرآن سننے کے لیے آپ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، کبھی آج تک قرآن کھل کے سنا نہیں، کچھ ماشاءاللہ چوتھی پانچویں دسویں بیسویں بار بھی سن رہے ہوں گے. جو نیا نیا آتا ہے نا وہ بہت ڈرا ہوتا ہے، وہ مہاجر ہے، وہ نیا نیا اپنی عادتوں کو چھوڑ رہا ہے، نیند کو چھوڑے گا، فیشن کو چھوڑے گا، خلاف شریعت کپڑوں کو چھوڑے گا. آپ کا میرا فرض کیا ہے کہ اس کے لیے انصار بن جائیں، اس کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ نئے آنے والوں پہ تنقید کرنا اور ان کو بہت ہی اچٹتی نگاہوں سے دیکھنا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے دین کے کام لے لے.